Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं जिसे हम चाह करके भी किसी भी व्यक्ति से व्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्योंकि रियलिटी तो ये है दोस्तों कि जिंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो हमारी खुद की होती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके छोटे छोटे हम तरीके ढूंढते हैं कि किस तरह से हम उससे बाहर निकले, पर कभी ऐसा हो नहीं पाता कि हम उससे पूरी तरह से बाहर निकल पाए। आज हम जानेंगे कि किस तरह से मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करने में, उसे एनहांस करने में और उसे बेटर करने में किस तरह से हेल्प करता है। आज हमारे साथ है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
ओम शांति।
डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में बहुत ही रेवलेशन से भरा हमारा वो एपिसोड रहा। हमने जाना कि किस तरह से आत्मा अर्थात सोल वो इटर्नल है। हमने ये भी जाना कि किस तरह से परमात्मा अर्थात गॉड वो भी इटर्नल है, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच का कनेक्शन अर्थात आत्मा और परमात्मा के बीच का कनेक्शन ये भी इटर्नल है। अब इस जर्नी में और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें और जानना ज़रूरी है?
जैसे हमने लास्ट टाइम इस बात को थोड़ा समझा कि मेडिटेशन बेसिकली क्या है
जी,
वो सत्य की अनुभव, सत्य को अनुभव करना ही मेडिटेशन है।
करेक्ट।
उससे पहला सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ, आई एम अ बीइंग नॉट द बॉडी। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर का मास्टर हूँ, शरीर का मालिक हूँ। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दैट इज ये एक फैक्ट है, राइट सत्य है। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, मतलब आत्मा सदा ही है। दूसरा, परमात्मा सदा ही है
जी,
राइट, और उसकी शेप भी कभी, उसकी कुछ फॉर्म चेंज नहीं होती। तीसरा, आत्मा परमात्मा का संबंध जो है वो सदा ही है,
ट्रू,
और एटर्नल है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। जन्म के साथ हमारा परिवर्तन, हमारे एक जन्म में कितने संबंध हमारे चेंज होते हैं। पहले बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, बड़े होकर फिर हम किसी के दोस्त बन जाते हैं, फिर हम किसी के पति या पत्नी बन जाते हैं, फिर हम माँ बाप बन जाते हैं, फिर हम दादा दादी बन जाते हैं, राइट,
ट्रू।
तो संबंध बदलते गए ना, किंतु परमात्मा से हमारा संबंध एक ही रहता है, सब संबंध उसके साथ रहते हैं। और चौथा एक और सत्य है, ये सृष्टि रूपी ड्रामा, इसमें इतनी सारी आत्माएं हैं। देखो, आप आज देखो 700 करोड़ से अधिक मनुष्य धरती पर हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, और उनका इस सृष्टि रूपी ड्रामा में रोल है, ड्रामा में नाटक है, ये नाटक है ना, बहुत बड़ा नाटक है, बहुत बड़ी बेहद की कैनवस है। इसमें 700 करोड़ एक्टर्स हैं, राइट,
ट्रू।
तो ये भी एटर्नल है, ये भी सत्य है, सदा ही है, राइट, और कभी मरता नहीं है, ये ड्रामा कभी मरता नहीं, कभी सृष्टि कभी खत्म नहीं होती। तो ये चौथा सत्य ये है कि हर आत्मा, 700 करोड़ जो आज आत्माएं, उससे अधिक आत्माएं धरती पर हैं
जी,
700 करोड़ आत्मा में से हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार इस सृष्टि रूपी ड्रामा में 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है।
वाओ, ओके।
और परमात्मा जो है वो इस सृष्टि का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है वो अच्छा हुआ है। सारी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सारे समाज में समस्याएं कहाँ हैं? सब प्रॉब्लम्स की जड़, चाहे मानसिक समस्या हो, पर्सनल समस्या हो, परिवार में कन्फ्लिक्ट हो, समाज में कन्फ्लिक्ट हो, दोस्तों से कन्फ्लिक्ट हो, बिजनेस में कन्फ्लिक्ट हो, ऑफिस में कन्फ्लिक्ट हो, देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो, या कहीं भी कुछ भी समस्या, दुनिया की सब समस्याएं सिर्फ इसी कारण से हैं कि मेरे साथ अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ है, राइट? क्योंकि कर्मों का ऐसा बताया ना, कर्मों के अनुसार नहीं, हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। मतलब जो कर्म मैंने किसी व्यक्ति के साथ इस जन्म में किए हैं या पिछले जन्मों में किए हैं, वो व्यक्ति ही इस जन्म में आकर के मेरा संबंधी बनता है। या तो मैं उन माँ बाप के पास जन्म लेता हूँ या लेती हूँ, या उससे मेरी शादी होती है। मेरा पति कोई क्यों बनता है या मेरी पत्नी वही क्यों बनी, क्योंकि पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है। मैंने उसी घर में जन्म क्यों लिया, क्योंकि मेरा उस आत्माओं से, उन माता पिता से कर्मों का हिसाब किताब पिछले जन्म कुछ लेन देन बाकी है, राइट?
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी आसपास लोग हैं वो इस वजह से है क्योंकि हमारा पिछले जन्म का कोई कनेक्शन था।
यस।
ओह ओके।
इस जन्म का भी है और पिछले जन्मों का भी है।
ओके।
हमारे आसपास कौन होते हैं जिनसे हम कोई कर्मों का हिसाब किताब होता है? किसी से हम दोस्ती कर लेते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, नहीं रहते?
ट्रू।
किसी को हम अपना बना लेते हैं, उसी से बन जाते हैं, तो हमारे आसपास ही रहते हैं। कई बार तो दिल के पास रहते हैं, कभी दिल से दूर रहते भी पास रहते हैं, नहीं रहते?
ट्रू। नहीं होता? बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर साहब एक थॉट आया मेरे दिमाग में कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को देखकर उनको हम पहले कभी मिले भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब उन्हें देखते हैं तो हमें या तो उनको देखकर के बहुत गुस्सा आता है, कई बार ऐसा होता है जबकि हम उनको जानते भी नहीं है, हम उनको कभी पहले मिले भी नहीं है, और या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उनको देख करके हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो अपने हैं, एक झटके में लगता है। तो ये दोनों क्या ये भी कुछ पिछले जन्मों का कनेक्शन है? ओके।
तो कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार
जी
ये सब कुछ हुआ है हो रहा है और होता रहेगा। तो ये हम कहाँ फंसे हैं आज? सारी प्रॉब्लम स्ट्रेस क्यों है, तनाव क्यों है, बीमारियां क्यों हैं, मन की और तन की बीमारियां क्यों हैं, झगड़े क्यों हैं, कोर्ट केसेस क्यों हैं, पुलिस में केसेस क्यों हैं, वो सारे के सारी प्रॉब्लम्स का कारण ये है कि जो मेरे साथ हुआ, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे तंग किया, उसने मेरे को चीट किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, मेरे साथ बहुत माँ बाप ने भी गलत किया, भाई बहनों ने भी गलत किया, इसने भी गलत किया, उसने भी गलत किया। तो पास्ट में ही हमारे विचार चलते रहते हैं।
ट्रू।
बल्कि मैं कहूँ कि 90% और भविष्य के बारे में चलते रहते हैं। तो पास्ट की साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हर्ट्स हमें अच्छी बातें याद नहीं रहती हैं, अच्छी बातें बहुत मुश्किल से याद आती हैं। पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स और फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज, इसी के बारे में हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसी से भरा रहता है। 90% विचार वहीं से आ रहे होते हैं, राइट?
जी।
सिर्फ 10% विचार ही प्रेजेंट से आ रहे होते हैं।
ओके।
तो आप समझिए कि ये जो हमारे प्रेजेंट को क्लाउड कर रहा है, और इसी से सारा तनाव बढ़ रहा है, इसी से प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, इसी से इरिटेशन बढ़ रही है।
True.
इसी से झगड़े बढ़ रहे हैं, है ना? तो अब जो ये हमें जब मेडिटेशन हम कर रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि मेरे साथ जो हुआ, किसी ने मुझे धोखा दिया तो मैंने उसको धोखा दिया हुआ है, कोई मेरी ग्लानी कर रहा है, मुझे मेरी बुराई कर रहा है, मैंने उसकी बुराई की हुई है, कोई मुझे मार रहा है तो मैंने क्यों मार रहा है, क्योंकि मैंने उसको मारा हुआ है, राइट? कोई मुझे हर्ट कर रहा है, क्यों हर्ट कर रहा है, मैंने उसको पहले हर्ट किया हुआ है, राइट? और वो हिसाब किताब के अनुसार, हिसाब किताब का अर्थ क्या है, अकाउंट, राइट? अगर 100 साल पहले किसी से मैंने 1000 रुपये उधार लिया और वो वापस किए बगैर मैं शरीर छोड़ दिया, मर गया, और इस जन्म में वो व्यक्ति मेरा दोस्त बन के आ गया, या माँ बन के आ गया, बाप बन के आ गया, भाई बन के आ गया, बेटा बन के आ गया, या बेटी बन के आ गया, तो क्या होगा? उस व्यक्ति को मुझे 1000 रुपये देने हैं, और हिसाब किताब क्या है, उसका ब्याज भी देना है।
रियली? उसका
इंटरेस्ट, 100 साल का भी इंटरेस्ट तो लगेगा ना,
फिर तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
और इंटरेस्ट कितना बनता है अगर पूछा जाए, जैसे मैंने कुछ लोगों से पूछा कि 1946 तक 3 गुना बनता था, तो अगर हम 100 साल पहले 16 में रहे, 16 to 46, 3 साल में 2 गुना हो जाता था पैसा। 46 से लेकर 66 तक 4 गुना, मतलब 4 साल में दुगना होता था
ओके
और फिर 66 से लेकर 86 तक 5 साल में दुगना होता था मनी
ओके
और फिर 86 से लेकर फिर 2000 तक 6-7 साल में होता था अभी शायद 8 साल में दुगना होता है
अच्छा
तो अगर हिसाब लगाएं तो 1000 रुपये का इंटरेस्ट 52 करोड़ 48 लाख रुपया बनता है
तो सच में इतना लौटाना है
तो हमको इतना लौटाना पड़ता है
तो ये तो
ब्याज ये कर्मों का हिसाब किताब है
नहीं मैं समझी नहीं तो आप कहना चाह रहे ये आप मनी वाइज बोल रहे हैं कि
मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ
अच्छा ओके
अगर 1000 रुपया हमने उधार लिया था और वापस नहीं दिया तो उसका 100 साल के बाद कहते हैं 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था दुनिया में गीत है ना
जी
तो 100 साल का संबंध होता है ना तो 100 साल पहले पिछले जन्म में भी हमें किसी से प्यार था वो हमारे हम उसके साथ थे आज इस जन्म में भी हमारे साथ आए तो वो हिसाब किताब जो भी मैंने गलत किया है उसके साथ
जी
अगर एक गाली दी है तो इसमें कितनी ब्याज कितना लगेगा 100 साल के बाद सुबह शाम दोपहर सब गाली खानी पड़ेगी दुख दिया तो कितनी बार दुख खाना पड़ेगा वापस चीट किया तो कितनी बार चीट होना पड़ेगा तो ये कर्मों का हिसाब किताब है कहते ना वो मुझे समझता ही नहीं है वो समझती ही नहीं है मैंने कितना उसने मुझे दुख दिया अभी अभी भी दुख दे ही रहे हैं मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ तो भी दुख दे रहे हैं इतना इसने मुझे वो किया है मेरा जीवन नरक बना दिया है तो हमने भी बनाया था राइट
आई थिंक अगर ये ये थॉट मैं सच कह रही हूँ मतलब मुझे तो ये आपने बात कही है मेरे इतने सारे प्रॉब्लम्स जो भी है वो सबका सोल्यूशन यही है रियलिटी ये है कि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ अभी क्योंकि मुझे उसके पीछे का रीज़न समझ में आ गया है कि गलती उनकी नहीं है मैंने किसी जन्म में उनके साथ किया है ऐसा इसी वजह से वो मेरे साथ ऐसा कर
ब्याज के साथ क्योंकि सामने वाला हक से करता है ना
करेक्ट
आप सोचते शायद वो कभी रियलाइज करेगा या करेगी वो कभी रियलाइज नहीं करते हैं हम अपने बच्चों को इतना अच्छा करते रहते हैं इतना अच्छा करते हैं बच्चे कभी खुशी नहीं होते क्यों खुश नहीं हो रहे उनको पढ़ाते हैं सब कुछ पालना करते हैं खाना खिलाते हैं सब कुछ देते हैं उनकी सब पालना करते उसके बाद कहते हैं पापा आपने क्या किया कुछ भी नहीं किया मेरा जीवन खराब कर दिया मम्मी मम्मा आप क्या करती हो आपको अक्ल ही नहीं है ना इस तरह से बात करते हैं ना जबकि मम्मा कितना उसका केयर करती कितना ध्यान रखती
जी
तो क्यों क्योंकि पिछले जन्मों का काउंट है और हम इसी बात से परेशान रहते हैं मेरा बच्चा मेरी मानता नहीं है मेरे को ऐसा बोलता है मेरी बेटी मेरे कहना नहीं मानती है वो ऐसा करती ऐसा बिहेव करती क्यों कारण क्या मेरा पति मेरी सुनता ही नहीं है सारा टाइम मुझे कुछ भी बोल देते हैं कुछ भी बिहेव करते हैं मेरी पत्नी मेरी सुनती ही नहीं है मेरे माँ बाप ऐसे बिहेव करते हैं मेरा भाई मुझसे हमेशा उसने मुझसे कितना मेरा सारी प्रॉपर्टी झड़प ली क्यों मेरा पड़ोसी मुझसे ऐसा कर रहा है ये कर्मों का हिसाब किताब है राइट
जी
तो जो भी हुआ है ये ट्रूथ है ये ट्रूथ है ये सत्य है कोई भी कर्म माफ नहीं होता है
अच्छा।
जैसा कर्म किया है उसका फल जरूर मिलेगा चाहे छोटा हो गरीब हो अमीर हो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो प्राइम मिनिस्टर हो या एक आम नागरिक हो या भिखारी हो जैसा कर्म ये कर्म सिद्धांत है ये सत्य है इटर्नल है राइट जो कर्म किया है वो कर्म 100 साल के बाद 1000 साल के बाद भी वो उसका फल ना मिले ही हो नहीं सकता कोई भी कर्म छुपा नहीं सकते हैं हम इस सत्य को रियलाइज करना है यही मेडिटेशन है राइट
ब्यूटिफुल
तो जो हुआ अच्छा हुआ ये ज्ञान मिलने के बाद मैं आत्मा हूं आप आत्मा है हम सब आत्मा है चाहे माँ है चाहे बाप है चाहे कोई भी संबंध है या दोस्त है या बिजनेस का मेरा बॉस है या मेरे ऑफिस में मेरा बॉस है ये मेरा चपड़ासी है मेरा नौकर है कोई भी संबंध कोई भी संपर्क की बात ले लीजिए जो कुछ भी हुआ है वो मेरे अपने कर्मों का परिणाम है कोई मेरी बहुत पूजा कर रहा है बहुत मेरे सुख दे रहा है वो भी मेरे किए हुए कर्मों का परिणाम है राइट कोई भी मेरी बहुत महिमा करता है दिन रात मेरी महिमा करता है मेरे आगे पीछे रहता है बहुत सेवा करता है वो भी मेरे कर्मों का परिणाम है अच्छा और बुरा दोनों ही मेरे कर्मों का परिणाम है तो ये हमें जब अगर हम समझ लें इस सत्य को पहचान लें कि जो हुआ अच्छा हुआ है राइट ये मेडिटेशन है पर ये कभी होगा जब मैं अपने को आत्मा समझूं दूसरे को आत्मा समझूं जिसके साथ भी मैं संबंध में हूं जितने भी मनुष्य हैं धरती पर सबको आत्मा रियलाइज करूं और हम ये समझे कि हम एक ही पिता के बच्चे भाई 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 हैं,
ओके,
चाहे माँ हो चाहे बाप हो चाहे पत्नी हो चाहे पति हो चाहे बच्चे हो चाहे दोस्त हो चाहे बॉस हो चाहे चपड़ासी हो, अगर ये हम रियलाइज करें और हमारे संबंध उसके साथ एटर्नल हैं, वो मेरा भी बाप है इसका भी बाप है, वो मेरी भी माँ है इसकी भी माँ है, राइट, जब ये हम एटर्निटी को समझें, इस सत्य को समझें, तो हम जरूर ये समझ पाएंगे कि जो हुआ
अच्छा हुआ,
अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसके लिए शक्ति चाहिए ना, वो शक्ति उस सागर से उस पावर हाउस से मिलेगी, वो सहन करने की शक्ति, वो परखने की शक्ति, जो हमने ये परखने की शक्ति चाहिए ना, पावर ऑफ डिस्क्रिशन चाहिए ना,
करेक्ट,
ये क्या हो रहा है, राइट को राइट परखना, रॉन्ग को रॉन्ग परखना, तो वो परखने की शक्ति किससे मिलेगी, उससे मिलेगी, तो तब हम करेंगे तो हम परख पाएंगे कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है,
ओके,
तब हम कह पाएंगे जो हुआ
अच्छा हुआ,
सत्य, इसलिए मेडिटेशन सब चीजों का सोल्यूशन है, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमें अभी हमें समझ मिल गई कि मैं देह नहीं हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और परमात्मा हर समय मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है और हर जगह मेरे साथ है।
पर डॉक्टर साहब, सपोज अगर कोई व्यक्ति बैंक्रप्ट हो जाता है तो इसमें इसमें क्या अच्छा है, क्योंकि मैं जितना देख पा रही हूँ उनके पूरे रिलेशनशिप्स पर उसका असर पड़ेगा, उनके लाइफस्टाइल पर उसका असर पड़ेगा, उनकी थॉट प्रोसेस पर उसका असर पड़ेगा, उनके बिजनेस पर उसका असर पड़ेगा, तो सब कुछ तो नेगेटिव ही हो रहा है, इसमें पॉजिटिव क्या है?
नहीं, इसमें भी कल्याण है,
ओके,
इसमें भी कल्याण है ना, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा तो रिच नहीं था, राइट,
ओके,
ये तो एक स्टेज है ना, ये तो एक जीवन की स्टेज है, जैसे दिन और रात, अब कहीं रात हो गई, सब कुछ रात हो गया, अंधेरा ही अंधेरा हो गया, अभी क्या करें, लाइट ही नहीं है, तो रात जरूरी है कि नहीं,
बिल्कुल,
दिन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, मतलब ऐसे जीवन में पैसा आना पैसा जाना, कुछ होना कुछ मिलना कुछ खोना, ये जीवन का शाश्वत नियम है, राइट, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार है, मैंने आज मेरा बैंक ट्रैप्सी का कारण बना है, क्यों बना, मेरा लालच मेरे बैंक ट्रैप्सी का कारण बना है, मैंने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसमें, उस शेयर में जहां मैं सोच रहा था बहुत शेयर ऊपर जाने वाला है, राइट, आज वो शेयर नीचे चला गया, मैं बैंक ट्रैप्ट हो गया, तो मेरे कर्म जिम्मेवार है ना, ये कोई और जिम्मेवार है?
ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बट डॉक्टर साहब यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगी,
प्लीज प्लीज,
कि अगर मैं, आपने कहा कि शेयर में डाला जहां पर मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि वहां पे ग्रोथ होगा, ऑब्वियसली अगर मैं एक सपोज 1 करोड़ रुपीज उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मेरे लिए ऑब्वियसली वो एक ग्रोथ का एक तरीका है, अगर ग्रो करना है जिंदगी में तो इन्वेस्टमेंट करना, रिस्क लेना, ये तो जरूरी है ही, तो इसमें मैं गलत क्या कर रही हूँ, इसमें लालच की तो कोई बात नहीं है, ग्रोथ की बात है, अगर मैं एज अ बिजनेसमैन बोलूँ तो मेरे लिए ये ग्रोथ है, हाँ भले वो चीज़ मेरे लिए उल्टा साबित हो गई और मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन तो गलत नहीं था,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
तो इसमें क्या गलती हो गई?
कोई गलती नहीं हुई, कोई गलत नहीं हुआ, तो वो हमने जैसा कर्म किया उसका फल मिला, ये तो हानि और लाभ तो जीवन का नियम है, राइट, तो जब हमने इन्वेस्ट किया ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के बजाय नीचे चला गया, तो ठीक अच्छी बात है, कल ग्रोथ हो जाएगी,
ओके,
है ना, यू वेट फॉर दैट,
okay,
patience is the way to lead a healthy and happy life,
correct,
अगर हमारे पास धीरज नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी क्यों, patient शब्द से patient शब्द आया है, if you lose your patience you become a patient,
oh
right,
okay,
इसलिए bankrupt होने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं, heart attack आ जाता है, hospital में दाखिल हो जाते हैं, पहले ही खर्च पैसे नहीं है, ऊपर से heart attack के पैसे और जमा कराओ, नहीं ऐसा होता,
true,
तो हमें अगर patience रखें कि पैसा सदा मेरे साथ नहीं था, आया चला गया फिर आ जाएगा, और मेरे साथ तो जाएगा नहीं,
ट्रू,
जाएगा तो नहीं,
बिल्कुल नहीं,
मैं 100 रुपये भी लेके तो साथ नहीं जा सकता हूँ, राइट,
जी,
तो वो शाश्वत, दैट इज मेडिटेशन, राइट,
ओके,
तो इस बात को, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब आई हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, आई हैव अंडरस्टूड द ट्रूथ, वो ट्रूथ सदा मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, पहले मैं झूठ के साथ जी रहा था, असत्य के साथ जी रहा था, उसमें दुख था, उसमें चेंजेस थे, हमेशा चेंज हो रहा था, तो मेरी स्थिति भी चेंज हो रही थी हमेशा, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी बहुत खुश कभी बहुत दुखी, कभी बहुत खुश। आज का इंसान ये तो है, कभी बहुत खुश कभी बहुत दुखी, कभी बहुत खुश कभी बहुत दुखी, कभी बहुत एक्सट्रीम में जा रहा है ना। और इससे एक एक क्या स्टेबिलिटी आ गई ना। और जो होने वाला है, क्या होने वाला है, सबसे अच्छा होने वाला। क्यों अच्छा? क्योंकि मेरे कर्म अभी ठीक है।
ओ तो बेसिकली
कर्म का हमें, आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो अच्छा फल मिलेगा ना।
करेक्ट। तो बेसिकली हमें पास्ट में फोकस नहीं करना है, हमें प्रेजेंट में फोकस करना है।
तो ये मेडिटेशन है।
ओके।
मेडिटेशन डिस्कनेक्ट्स अस फ्रॉम द पास्ट एंड डिस्कनेक्ट्स अस फ्रॉम द फ्यूचर एंड टीचेस अस टू बी इन द प्रेजेंट, राइट?
बट डॉक्टर साहब, जितना मैंने समझा,
मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ स्टेइंग इन द प्रेजेंट।
ओके, समझा।
और मेडिटेशन क्या था, पास्ट में क्या चीज है, नेगेटिव याद आता है, फ्यूचर का भी कभी अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, ये भी साथ नहीं देता, ये भी साथ नहीं देती, ऐसा होता है, ये भी ऐसा है, ये भी मेरा तो भविष्य में ऐसा होने वाला है। देखो आपके पास एक एक ना एक बर्तन है, उसमें 2 लीटर दूध है
जी,
ठीक है, दूध है 2 लीटर। अब इसमें एक मक्खी गिर गई, अब आपको क्या नजर आ रहा है मक्खी दूध में, दूध में क्या उस बर्तन में क्या नजर आ रही है?
मक्खी।
आप क्या कहें, दूध दूध है इसमें 2 लीटर, या कहेंगे मक्खी है इसके अंदर?
मक्खी है,
दूध में मक्खी है ना, तो मक्खी दिखाई दे रही है, दूध दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा ही हमारे जीवन में, हमें इतनी अच्छी बातें हमारे साथ बचपन से लेकर अभी तक हुई हैं, किंतु उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, मेरी माँ ने ऐसा बोला था उस दिन, मेरे फादर ने मेरे को ऐसा बोला था, मेरी पत्नी जब शादी होकर आई तो उस 3 दिन के बाद उसने मेरे को ऐसा बोला, मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया। कितना अच्छा किया वो नहीं, इतना तोला मेरे को सोना चढ़ाया वो याद नहीं, इतना जेवर मेरे को चीज़ें दी वो चीज़ याद नहीं, किंतु क्या किया, एक बात गलत बोली थी, एक दिन गलत बिहेव किया था, वो मक्खी याद रहती है।
True.
और भविष्य की मक्खी याद रहती है, राइट? तो ये प्रॉब्लम है, इससे हमारा जीवन क्राउड होके दुखी दुखमय बन जाता है। तो ये मेडिटेशन है कि मेडिटेशन हमको तो सारा नेगेटिव खत्म, पास्ट का भी नेगेटिव खत्म, फ्यूचर का भी खत्म, सिर्फ तो मेडिटेशन इज आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग।
परफेक्ट,
राइट? तो दिस इज मेडिटेशन। मैं इसको सिंपल भाषा में कहता हूँ, ABCD, राइट?
ओके।
ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, बाबा मीन्स फादर गॉड, सी फॉर कनेक्शन अर्थात आत्मा और परमात्मा का संबंध, और डी फॉर ड्रामा।
वाओ,
राइट? तो व्हाट इज मेडिटेशन?
ABCD,
रियलाइजेशन ऑफ ABCD, सत्य को अनुभव करना, सत्य को जीना, ABCD को जीना, ABCD को अनुभव करते रहना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते सत्य को, इस ABCD को अनुभव करते रहिए, ABCD को जानते रहिए गहराई से, इसकी गहराई में जाते रहिए, इसकी और बहुत हम आगे चलेंगे, कैसे इसकी और हम गहराई में जाएंगे, तो ये है मेडिटेशन।
दिस इज सो ब्यूटिफुल। आई थिंक ये जो एपिसोड रहा है डॉक्टर साहब, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं कई सारे सवाल के साथ में मैं इधर बैठी थी, क्योंकि मुझे मेडिटेशन, सच बोलो तो इतनी कंफ्यूज थी मैं मेडिटेशन को लेकर के कि एग्जैक्टली है क्या। तो अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिले हैं मुझे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, जिससे मैं आगे के एपिसोड के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम श्योर कि हम आगे भी इसी तरह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
थैंक यू।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से यह वर्ल्ड ड्रामा कल्याणकारी है। हमने ये जाना कि हर एक सेकेंड जो हम समझते हैं कई बार कि हमारे लिए ये हितपूर्व नहीं है या ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि हर एक पल में कल्याण समाया हुआ है। यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। अगर हम इस बात को मान लें तो हमें कोई भी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का भी हम डट कर सामना कर पाएंगे और उस पर जीत हासिल कर पाएंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।